एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो सच में झकझोर कर रख देगा।
हाँ बिल्कुल,
मारियो वर्गस ल्योसा का मशहूर उपन्यास ला फिएस्टा डेल चीवो, मतलब बकरे का भोज। ल्योसा, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, लैटिन अमेरिकी साहित्य के मतलब एक ऐसे महारथी हैं जिनकी कलम सीधे सत्ता के दिल में उतरती है, इंसान के मन की गहराइयों में।
सही कहा, उनकी पकड़ कमाल की है।
और ये उपन्यास डोमिनिकन गणराज्य के इतिहास के एक, कह सकते हैं, एक काले अध्याय को सामने लाता है। तानाशाह राफेल त्रुहियो, उसके क्रूर शासन के वो आखिरी दिन।
हाँ, ऐतिहासिक उपन्यास तो है, पर उससे कहीं ज्यादा है ये।
बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस घुटन, उस डर, उस नैतिक पतन की कहानी है जो तानाशाही के साये में पनपता है। इधर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। तो आज इस बातचीत में हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि ल्योसा कैसे इतिहास, स्मृति और इंसानी त्रासदियों को एक साथ बुनते हैं।
और ये कैसे दिखाते हैं कि सत्ता कैसे इंसान को बदल देती है, और कैसे कैसे अतीत का बोझ कभी पीछा नहीं छोड़ता पीढ़ियों तक।
तो शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से, जो आपने कहा कि बहुत खास है।
हाँ बिल्कुल, इस उपन्यास का ढांचा वो बहुत अनूठा है। ल्योसा ने कहानी को तीन अलग अलग धाराओं में भाया है एक साथ।
जैसे तीन अलग कैमरे हो।
हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे तीन अलग कोणों से एक ही भयावह नाटक चल रहा हो। एक धारा है 1996 की,
अच्छा,
जहां एक किरदार है उरानिया कब्रल, वो सालों बाद लौटी है अपने अतीत का सामना करने। दूसरी धारा हमें सीधे ले जाती है 30 मई 1961, वो दिन, त्रुहियो का आखिरी दिन, जब वो जिंदा था पर उसकी मौत का इंतजाम हो रहा था।
और तीसरी,
तीसरी धारा उन लोगों के साथ है जो उस रात उस मौत को मतलब अंजाम देने वाले थे, षड्यंत्रकारी। और ये तीनों धागे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर एक विस्फोटक सच में मिल जाते हैं।
और वो शीर्षक बकरे का भोज, ये नाम कहाँ से आया?
हाँ ये दिलचस्प है, त्रुहियों को लोग पीठ पीछे एल चीवो कहते थे, मतलब बकरा।
क्यों?
शायद उसकी शिकारी फितरत के लिए, उसकी हवस के लिए, लेकिन इसका मतलब और भी गहरा हो सकता है।
जैसे?
जैसे क्या ये उन अनगिनत लोगों का प्रतीक है जिन्हें उसने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए बलि चढ़ा दिया, एक तरह का भोज।
या फिर क्या ये खुद त्रुहियों के अंत का संकेत है, उसके अपने कर्मों का फल, उसका भोज?
हाँ हो सकता है, ये सवाल उपन्यास के केंद्र में है और ये दिखाता है कि कैसे एक आदमी का आतंक एक पूरा देश उसकी गिरफ्त में आ जाता है।
तो चलिए पहली धारा से शुरू करते हैं, उरानिया कब्रल।
हाँ उरानिया, कहानी 1996 में खुलती है, वो 35 साल बाद डोमिनिकन गणराज्य लौटी है लंबे स्वनिर्वासन के बाद।
35 साल, बहुत लंबा समय है।
हाँ न्यूयॉर्क में वो एक कामयाब वकील हैं, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे एक गहरा अकेलापन है, एक खालीपन।
लगता है जैसे उसने अपने दिल के चारों ओर एक एक दीवार खड़ी कर ली हो।
बिल्कुल, और क्यों, यही तो रहस्य है। वो वापस आई है अपने पिता से मिलने, अगस्टिन कब्रल।
वही जो त्रुहियों के करीबी थे।
हाँ कभी थे, उन्हें सेरिब्रिटो कहते थे, मतलब छोटा दिमाग, उनकी तेज बुद्धि के लिए। लेकिन अब वो पिता बूढ़े हैं, बीमार, लकवाग्रस्त, बोल भी नहीं सकते।
तो उरानिया की वापसी सवालों से भरी है, वो 35 साल पहले क्यों गई?
हाँ अचानक क्यों चली गई, इतने साल संपर्क क्यों नहीं रखा परिवार से, देश से। उसकी आंखों में, उसकी चुप्पी में एक भारी बोझ साफ नजर आता है, अतीत का बोझ।
और यही ल्योसा का कमाल है ना? उरानिया की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहती,
नहीं बिल्कुल नहीं,
उसकी चुप्पी, उसका दर्द, वो उस पूरे देश की कहानी बन जाती है जिसने त्रुहियों के राज में सालों तक डर और खामोशी झेली।
हाँ, और ल्योसा में सीधे उसके मन में ले जाते हैं, उसकी यादों के भंवर में, वो जो चेतना प्रवाह तकनीक है,
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
हाँ हम उसके बिखरे हुए विचार, कड़वी यादें, अनकहे सवाल, सब सीधे महसूस करते हैं बिना किसी फिल्टर के, जैसे उसकी आत्मा की आवाज सुन रहे हो।
ये पाठक को उसके दर्द से एकदम सीधे जोड़ देता है।
बिल्कुल। अच्छा अब चलते हैं दूसरी धारा पर, खुद तानाशाह राफेल द्रुहियो, उसका आखिरी दिन। उपन्यास उसे एक 70 साल के बूढ़े होते शासक के रूप में दिखाता है, वो अब भी अपनी छवि को लेकर, अपनी ताकत को लेकर बहुत सचेत है। सुबह कसरत करता है, करीने से कपड़े पहनता है,
लेकिन
अंदर ही अंदर शरीर साथ छोड़ रहा है। उपन्यास में उसके मूत्र असंयम का जिक्र है।
अच्छा,
और ये शायद उसके ढलते नियंत्रण का, उसके पतन का प्रतीक है। वो आदमी जो पूरे देश को मुट्ठी में रखता था, अब अपने शरीर पे ही काबू खो रहा था।
ये बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या उसकी वो क्रूरता, वो हवस, वो जुल्म कहीं ना कहीं इस अंदरूनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश थी?
हाँ, हो सकता है जैसे बाहरी दुनिया पर नियंत्रण और मजबूत करके अपनी अंदरूनी असुरक्षा को दबाना चाहता हो। उपन्यास उसे एक जटिल शख्सियत दिखाता है, अहंकारी, वहमी, क्रूर और साथ ही अपनी यौन शक्ति को लेकर भी चिंतित।
वो खुद को हितैषी कहता था ना, बेनिफैक्टर।
हाँ, कहलवाता था, लेकिन उसका राज डर और चापलूसी पट्टी का था। उसके आसपास हमेशा चमचों की भीड़, कठपुतली राष्ट्रपति ख्वाकिन बालागेर, खूंखार खुफिया प्रमुख जॉनी अबेज गार्सिया। उसका पूरा दिन बैठकों, आदेशों और अपनी महानता के भ्रम में बीतता है।
और यही वो बुराई की सहजता वाली बात सामने आती है ना, मैनालिटी ऑफ ईविल।
हाँ, बिल्कुल हन्ना एरेंट वाली बात।
ऐसे भयानक अत्याचार भी रोजमर्रा के काम की तरह किए जा सकते हैं एक सिस्टम के तहत। ट्रूहियो का दिन यही दिखाता है, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, आदेश और इसी सब के बीच जुल्मों के फैसले, जैसे कोई मामूली काम हो।
सही कहा, ये चीज तानाशाही को और भी ज्यादा डरावना बना देती है।
और इसमें वो माचिस्मो का पहलू भी है, मर्दवादी अहंकार, उसकी औरतों के प्रति हवस। वो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो सत्ता जताना था।
हाँ, अपने नियंत्रण को साबित करने का जरिया, बिल्कुल। और फिर आता है उसका वो घातक फैसला।
कौन सा?
उस शाम 30 मई 1961 को अपनी पसंदीदा शेवरले गाड़ी में कम सुरक्षा के साथ शहर से बाहर अपनी एक ग्रामीण संपत्ति की ओर निकलना।
और पाठक जानता है कि ये उसका आखिरी सफर है।
हाँ, लेकिन ट्रूहियो बेखबर है, वो अपनी हवस पूरी करने जा रहा है। ये विडंबना ये कहानी में एक अजीब सा तनाव पैदा करती है।
और यही यही तीसरी धारा इंतजार कर रही है, षड्यंत्रकारी।
हाँ, राजधानी के बाहर एक अंधेरे हाईवे पर कुछ लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। फिर है अमादितो गार्सिया गेरेरो, एक नौजवान गार्ड।
उसका क्या मकसद है?
उसका प्यार ट्रूहियो के शासन ने छीन लिया, उसका मोह भंग हो चुका है। वो शायद आदर्शों के लिए लड़ रहा है, और साल्वाडोर एस्ट्रेला सदाला भी है।
वो धार्मिक वाला?
हाँ, बहुत धार्मिक। वो हत्या के पाप और तानाशाह को मारने की जरूरत के बीच फंसा हुआ है। उसका संघर्ष नैतिक है।
तो सबके मकसद अलग अलग
है। हाँ, उनके बीच डर है, तनाव है, और इंतजार के उन लंबे लम्हों में उनकी अपनी कहानियां उभरती हैं। ट्रूहियो के जुल्मों की यादें हवा में जैसे साजिश की धड़कनें महसूस होती हैं।
ये भी दिलचस्प है कि इनमें से कई लोग कभी न कभी ट्रूहियो के शासन का हिस्सा रहे थे।
हाँ, ये बात गौर करने वाली है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों का विद्रोह नहीं था, यह अंदर से उठी आवाज थी।
लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या ये क्रांति थी या सिर्फ बदला, हिसाब चुकता करना?
उपन्यास इन सवालों को खुला छोड़ता है।
हाँ, और यही कहानी को और जटिल बनाता है।
हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रतिरोध के रास्ते कितने कितने पेचीदा हो सकते हैं।
और फिर वो पल आता है, ट्रूहियो की गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आती हैं।
अंत आ गया।
हाँ, घात लगाकर हमला होता है, गोलियों की बौछार, और उस बकरे का अंत होता है।
वो सीन बहुत बहुत अराजक है, तेज, हिंसक।
लियोसा उसे पूरी सच्चाई से दिखाते हैं।
हाँ, बिना कुछ छुपाए, गोलियों की बौछार में तानाशाह का अंत।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में शायद असली त्रासदी तो अब शुरू होती है।
हाँ, बिल्कुल, क्योंकि षड्यंत्रकारियों को जल्दी पता चलता है कि उनकी योजना अधूरी थी।
वो सैन्य विद्रोह नहीं हुआ?
नहीं, उन्हें उम्मीद थी सेना साथ देगी, एक बड़ा विद्रोह होगा, लेकिन जनरल रोमान, जिस पर उन्हें भरोसा था, वो आखिरी मौके पर डर गया, पीछे हट गया।
ओहो,
और इसके बाद जो होता है वो भयानक है। त्रुहियों का बेटा रामफिस और खुफिया चीफ जॉनी आबिस, वो बदले की आग में जल उठते हैं।
तो मतलब
पूरे देश में दहशत का तांडव शुरू हो जाता है। षड्यंत्रकारियों और उनके परिवारों को ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है, और उन पर अकल्पनीय अत्याचार होते हैं, कई मारे जाते हैं।
और इसी उथल पुथल के बीच वो कठपुतली राष्ट्रपति बालागेर।
हाँ, ख्वाकिन बालागेर, वो चालाक और धैर्यवान आदमी, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है।
कैसे?
वो त्रुहियो परिवार को किनारे लगा देता है और खुद सत्ता पर काबिज हो जाता है।
तो मतलब तानाशाह को मारा, पर तानाशाही
तानाशाही खत्म नहीं हुई, ये एक अधूरी क्रांति थी। और यहीं वो बात सच साबित होती है।
कौन सी?
एक मिथक को मारना एक आदमी को मारने से ज्यादा मुश्किल है।
बिल्कुल सही। त्रुहियो मर गया, लेकिन उसका बनाया हुआ डर का सिस्टम, वो जिंदा रहा।
हाँ, उसका मिथक जिंदा रहा और बालागेर जैसे लोगों ने उसी डर को भुनाकर अपनी सत्ता जमाई।
और इसी उथल पुथल भरे माहौल में
उरानिया की कहानी
अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। सालों की घुटन के बाद, चुप्पी के बाद, वो आखिरकार अपने परिवार के सामने सच उगल देती है,
अपनी चाची और चचेरी बहनों के सामने।
हाँ, वो उस रात का सच बताती है, कैसे उसके पिता अगस्तिन कब्राल ने त्रुहियो का भरोसा वापस जीतने की हताशा में अपनी ही 14 साल की बेटी को उस बूढ़े तानाशाह के सामने परोस दिया था।
हे भगवान!
वो उस रात के अपमान का वर्णन करती है, उस बलात्कार का, जो शायद त्रुहियो की नपुंसकता के कारण पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने उरानिया की आत्मा पर हमेशा के लिए घाव छोड़ दिया।
ये चुप्पी का टूटना है।
हाँ।
अतीत का भयानक सच का सामना।
हाँ।
ये उपन्यास का शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है।
यहाँ उरानिया का व्यक्तिगत दर्द, उसका अपमान, वो सीधे उस राजनीतिक क्रूरता से जुड़ जाता है।
बिल्कुल, उसका बलात्कार सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं रह जाता।
नहीं, वो पूरी व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है जो इंसानी गरिमा को पैरों तले रौंद देती थी। ये दिखाता है कि तानाशाही कैसे सबसे निजी रिश्तों को भी जहरीला बना सकती है, कैसे वो पिताओं को अपनी बेटियों का सौदा करने पर मजबूर कर सकती है।
हाँ, यहाँ अगस्तिन कब्राल की मिलीभगत वो अपने सबसे घिनौने रूप में सामने आती है।
इसे पढ़ना या सुनना आसान नहीं है, ये अंदर तक हिला देता है।
हाँ, पूरे उपन्यास में डर, घुटन, शक का माहौल छाया रहता है। यातना के वर्णन वो इतने असली हैं कि विचलित करते हैं, पर शायद जरूरी भी हैं।
हाँ, ताकि हम समझ सकें कि तानाशाही की असली कीमत क्या होती है
और उड़ानिया के प्रति गहरी सहानुभूति पैदा होती है, उसके दर्द के लिए, उसकी लंबी चुप्पी के लिए और अंत में सच बोलने के उसके साहस के लिए।
और त्रुहियो का चित्रण भी कमाल का है। लियोसा उसे सिर्फ एक राक्षस बनाकर नहीं छोड़ते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जटिल, असुरक्षित, बूढ़े होते इंसान के रूप में भी दिखाते हैं।
और ये इसे कम डरावना नहीं बनाता, शायद और ज्यादा भयानक बनाता है।
हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि ऐसी क्रूरता वो किसी में भी पैदा हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम उस स्थिति में होते तो क्या करते? मिलीभगत और प्रतिरोध के बीच हम कहाँ खड़े होते हैं?
बिल्कुल, ये उपन्यास कई गहरे सवाल छोड़ जाता है।
बेलगाम सत्ता कैसे भ्रष्ट करती है?
चुप्पी और मिलीभगत की कीमत क्या है?
क्या यादें हमें आजाद करती हैं या कैद रखती हैं?
क्या हिंसा से कभी न्याय मिल सकता है? क्या सिर्फ तानाशाह को हटाने से आजादी मिल जाती है?
और ल्योसा की लिखने की शैली, वो यथार्थवाद, वो तीन कहानियों को एक साथ बुनने का तरीका, जिसे वो टोटल नॉवल कहते हैं।
हाँ, एक ऐसा उपन्यास जो किसी समाज या दौर की पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश करे, राजनीति, इतिहास, व्यक्तिगत जीवन, सब कुछ मिलाकर।
बिल्कुल, अलग अलग नजरियों का इस्तेमाल, विडंबना, प्रतीक, जैसे वो बकरा,
असह्यम,
ऐतिहासिक सच्चाई और पात्रों के मन की गहराइयों में उतर जाना,
ये सब मिलकर इस कहानी को इतना असरदार बनाते हैं।
सच में ये एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से भूल नहीं सकते।
ये एक अंतरात्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है।
ये सिर्फ डोमिनिकन गणराज्य या त्रुहियो की कहानी नहीं है।
नहीं, ये दुनिया में कहीं भी, किसी भी दौर में सत्ता के खतरों और इंसानी गरिमा के संघर्ष की कहानी है।
संक्षेप में कहें तो ये उपन्यास तानाशाही का एक बेहद शक्तिशाली और बहुस्तरीय विश्लेषण है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक जुल्म व्यक्तिगत जीवन पर, आत्मा पर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं।
और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास के काले अध्यायों का सामना करना कितना जरूरी है। सच बोलना, चुप्पी तोड़ना, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता का अंधापन और अहंकार न केवल दूसरों को बर्बाद करता है,
बल्कि अंततः खुद सत्ताधारी को भी ले डूबता है।
और ये कि सच्ची आजादी सिर्फ जंजीरें तोड़ने से नहीं मिलती,
बल्कि उस डर से मुक्ति पाने में है जो जंजीरें पहनाता है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।